आज श्रीला माधवेंद्र प्री जी का तिरुभाव दिवस है, तो इस अवसर पर हम श्री माधवेंद्र प्री के जीवन से थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री माधवेंद्र पुरी परम वैष्णव है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है, उनके परम गुरु हैं। तो इन इस प्रकार के महान वैष्णव के बारे में चर्चा करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन वैष्णव के आदेश से और वैष्णव के आशीर्वाद से हम यह सेवा करने का प्रयास करेंगे। मुझे रात में बहुत लेट से बताया कौस्तुपुर ने कि आज क्लास देनी है, तो मैंने सोचा कि और कुछ हो ना हो एटलीस्ट कौस्तुपुर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे अगर मैं हाँ बोलूँगा। तो उनकी प्रसन्नता के लिए और उनके आदेश से आज हम माधवेंद्रपुरी जी के बारे में चर्चा करें। बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा अनिला आनंद बाड़िला मने दुख न गणिला। बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा अनिला आनंद बाड़िला मने दुख न गणिला। बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा अनिला आनंद बाड़िला मने दुख न गणिला। काफी कष्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन के बोझ को रेमुणा ले आए, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सारी कठिनाइयों की परवाह नहीं की। प्रगाढ़ प्रेम रे स्वभाव आचार निज दुख विघ्न धरि ना करे विचार। उत्कृष्ट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं का या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कृष्ट प्रेम है, वे अपनी असुविधाओं तथा विघ्नों की परवाह नहीं करते। ऐसे भक्तजन भगवान या उनके प्रतिनिधि रूप गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी वे परम संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे सेवक का उत्कृष्ट प्रेम सिद्ध होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणम। जो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वे भगवत धाम वापस जाने के सुपात्र हैं। कृष्ण का उत्कृष्ट प्रेम असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की परवाह नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को वैष्णव में दुख या शोक दिखे, तो वह उसके लिए रंच भर भी दुख या शोक नहीं होता, यह तो दिव्य आनंद होता है। शिक्षाष्टकम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया है, आश्लिष्य व पाद रथाम। कृष्ण का उत्कृष्ट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा में विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों ना आए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। अभी गौर पूर्णिमा का जो महोत्सव आने वाला है उसके तैयारी के स्वरूप में आज हम श्री माधवेंद्रपुरी के चरित्र का वर्णन थोड़ा सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना व्यवहारिक है श्रीमद् भागवतम के संदेश को समझने के लिए कि श्रील प्रभुपाद ने अपने भागवतम का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दिया गया श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय उसको पूर्ण रूप से लिखा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जीवन शैली को जानकर, उनका उनके भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है उसको जानकर, उसको समझकर ही हम श्रीमद् भागवतम के संदेश को जान सकते हैं। और अभी तो उस इंट्रोडक्शन को लेकर एक बीबीटी ने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, एक छोटी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए गौड़िया वैष्णवों के लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के चरित्र को सुनना और उनसे प्रार्थना करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्तिमय पथ का। श्रील माधवेंद्रपुरी बहुत ही महान वैष्णव है। गौण गणोदेश दीपिका में बताया जाता है कि वे गोलोक वृंदावन के एक कल्प वृक्ष हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिससे कि वे राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकें और उस प्रेम को आगे चलकर बांटने के लिए, पूरे विश्व में बांटने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के सहायक बन सके। तो श्रील माधवेंद्रपुरी श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जो कि श्रील माधवाचार्य के संप्रदाय में आते हैं उनके शिष्य थे। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो उन्होंने गीत लिखा है परंपरा के सभी आचार्यों का गुणगान करने के लिए, उसमें वे कहते हैं, माधवेंद्रपुरी बड़ा शिष्य बड़ा श्री ईश्वर। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी बहुत महान वैष्णव थे और उनके शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, और कौन उनके शिष्य थे? नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य, जो कि अणु नहीं है, जीवात्मा को अणु कहा जाता है, जीवात्मा तुच्छ है तो उसको अणु कहते हैं। और विभु का अर्थ होता है विष्णु तत्व, जो भगवान का तत्व विष्णु तत्व। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, अर्थात नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य ये भी उनके शिष्य थे। तो हम सोच सकते हैं कि श्रील माधवेंद्रपुरी का स्तर क्या है अगर आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं और महाविष्णु और सदाशिव के जो अवतार हैं श्री अद्वैत आचार्य, अगर वो उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं तो माधवेंद्रपुरी का स्तर कितना ऊंचा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे भी दीक्षा नहीं लेते, उनके जो शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु दास दासानुदास के भाव को प्रदर्शित करना चाहते थे और अपने साक्षात उदाहरण से दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से अगर कोई भक्त कोई शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर देता है तो उसको जीवन में भगवान की सर्वोच्च कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी जी की जो भक्ति है उसका वर्णन स्वयं किया है चैतन्य चरितमृत में। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाने के इच्छुक थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के इच्छा के कारण वे शांतिपुर आते हैं और शांतिपुर में 10 दिन वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकलते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाने जाते समय जब वे रेमणा में आते हैं तो रेमणा में खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर कीर्तन करते हैं और वहाँ पर बैठकर श्री माधवेंद्रपुरी के जीवन का पूरा वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। आप सोचिए, हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, अगर भगवान किसी का गुणगान करते हैं तो वो कितने महान व्यक्ति रहेंगे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रेमणा में खीरचोर गोपीनाथ मंगन मंदिर के प्रांगण में बैठकर स्वयं अपने मुख से अपने भक्तों के श्रवण के लिए माधवेंद्रपुरी जी की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो थोड़े समय के बाद जब अक्षय तृतीया आती है, जब चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, तो उस समय पर हम चंदन यात्रा का और श्री माधवेंद्रपुरी जी का पूरा वर्णन करते हैं। आज उसका ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा त्रोभाव दिवस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे कि वे किसी और जन का जो भक्त नहीं है उसका संग नहीं करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि माधवपुरी ने देखा कि पूरे भारत भर में भ्रमण किया और देखा कि कहीं भी लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं। हम चैतन्य चरितमृत में भी पाते हैं कि किस प्रकार से उस समय पर लोग देवी पूजा करते थे, काली पूजा करते थे, जो सर्प इत्यादि इनकी पूजा करते थे, पितरों की पूजा करते थे, लेकिन सारा जो कार्य है केवल भौतिक लाभ के लिए करते थे। शुद्ध भक्ति के पथ पर कोई अग्रसर नहीं था, किसी को उसमें रुचि नहीं थी। तो समाज की इस प्रकार की दशा देखने के बाद माधवेंद्रपुरी समाज छोड़कर जो जहाँ पर लोग रहते हैं एकांतवास करने के लिए वन में जाते हैं और सोचते हैं कि वन में मैं कम से कम सन्यासी जो है जिन्होंने भौतिक जीवन त्याग दिया उनका संग करूँगा। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि सन्यासी सब मायावादी सन्यासी जो कहते हैं नमो नारायण है, आप भी नारायण हैं, हम भी नारायण हैं, संन्यास लेने मात्र से नारायण बन जाते। तो इसको देखकर उनके हृदय को और पीड़ा हुई। तो माधवेंद्रपुरी इसलिए एकांतवास करते थे क्योंकि वे किसी और जो अभक्त हैं उनका संग नहीं करना चाहते थे, उनके संग से बचना चाहते थे, इसलिए निर्जन भजन करते थे और अकेले रहते थे। लेकिन उनका कृष्ण प्रेम इतना उन्नत था कि अगर वे बादल भी देखते थे, अगर काले घने बादल देखते थे, तो कृष्ण का स्मरण इतनी तीव्रता से होता था कि वे बादल देखकर मूर्छित हो जाते थे। तो इस प्रकार का जो कृष्ण प्रेम है उसके वे स्रोत थे, इसके वे भंडार थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की युगल भक्ति का जो बीज है वो श्री माधवेंद्रपुरी के माध्यम से यहाँ पर बोया और उसके बाद श्री ईश्वरपुरी ने उसको और पानी डाला, सींचा, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसके जो फल थे उनको लेकर पूरे विश्व भर में बांट दिया और भारत भर में चैतन्य महाप्रभु ने बांटा और उसके बाद श्री श्रील प्रभुपाद ने उन्हीं फलों को लेकर पूरे विश्व भर में उनका वितरण किया। तो इस प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम का भंडार थे और सदैव कृष्ण नाम लेने में मग्न रहते थे और कुछ कार्य नहीं करते थे। वो जो अजगर वृत्ति है उसका पालन करते थे, अर्थात कभी भी किसी भी कारण से किसी से कुछ भिक्षा नहीं लेते थे। हालांकि सन्यासी के लिए भिक्षा मांगना वर्जित नहीं है, लेकिन वे कृष्ण पर इतने आश्रित थे कि सोचते थे कि अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो हम कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा वो कृष्ण भजन में ही मग्न रहते थे। तो ये बहुत ही सर्वोच्च स्तर है कृष्ण के ऊपर आश्रित रहने का। तो इस प्रकार से कभी कुछ भिक्षा नहीं मांगते थे, कभी जीवन यापन के लिए या शरीर के सुविधा के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे, केवल भगवान का नाम गुण लीला इत्यादि का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के चरित्र का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि ये माधवेंद्रपुरी ये थे और उसके बाद उनका वर्णन करते हैं किस प्रकार से वो वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर जो गोपाल जी का विग्रह है वो स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट होकर उनको कहते हैं कि आप हमें यहाँ से निकालिए झाड़ियों के बीच में से। फिर वे वहाँ मंदिर की स्थापना करते हैं और मंदिर की स्थापना करने के बाद फिर से गोपाल जी उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाकर चंदन मेरे लिए लेकर के आइए। तो चंदन लेने के लिए श्री माधवेंद्रपुरी आते हैं और उस समय आते समय वे नवदीप धाम में जाते हैं, जब वे चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे थे तब, और वहाँ पर उनकी भेंट अद्वैत आचार्य प्रभु से होती है, और वहाँ पर अद्वैत आचार्य को दीक्षा प्रदान करते हैं, अद्वैत आचार्य उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद वे रमुना आते हैं, और रमुना में हमको पता है किस प्रकार से भगवान उनके लिए खीर चोरी करते हैं, और गोपीनाथ का नाम हो जाता है खीर चोर गोपीनाथ। और उसके बाद वे जगन्नाथपुरी जाकर चंदन प्राप्त करते हैं, वापस आकर वे रमुना में रहते हैं, और वहीं पर वो चंदन गोपीनाथ जी को अर्पित करते हैं। गोपाल जी आकर फिर से उनको स्वप्न में बोलते हैं। तो शिला माधवेंद्रपुरी का जो त्रोभाव है, उनकी जो समाधि मंदिर है, वो वास्तव में रमुना में स्थित है। रमुना मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर माधवेंद्रपुरी जी की समाधि वहाँ पर स्थित है, और आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। तो जब वे जीवन के अंतिम सत्र में थे, अंतिम समय में थे, तो ये प्रदर्शित करने के लिए कि किस प्रकार एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए भगवान के इच्छानुसार उनके शरीर में बहुत व्याधि हो गई, और वे उठकर मलमूत्र त्याग भी नहीं कर पाते थे। तो उस समय पर श्री ईश्वरपुरी, जो उनके परम प्रिय शिष्य थे, उन्होंने उनके इतने प्रेम से सेवा की कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनको आलिंगन किया और उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का और कोई अन्य माध्यम नहीं है। जब तक गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त नहीं होता है अपने सेवा भाव से, तब तक अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो भी जो शास्त्र अध्ययन का मार्ग हो, या फिर तप का मार्ग हो, या योग का मार्ग हो, या दान इत्यादि का मार्ग हो, उस मार्ग से व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर सकता है, ज्ञान मार्ग इत्यादि से, तपस्या इत्यादि से, ब्रह्म ज्योति इत्यादि को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। लेकिन कृष्ण प्रेम अगर किसी को प्राप्त करना है, भगवत धाम किसी को प्राप्त करना है, गोलोक वृंदावन किसी को प्राप्त करना है, तो गुरु की सेवा से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किए करने के अतिरिक्त और कोई उपाय, और कोई मार्ग नहीं है। तो श्री माधवेंद्रपुरी के हृदय में जो प्रेम था कृष्ण के लिए, श्री ईश्वरपुरी की सेवा से प्रसन्न होकर वही प्रेम उन्होंने उनके हृदय में संचारित किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब नवद्वीप में अवतरित हुए, तो पहले वे एक विद्वान पंडित की भूमिका करते हैं, निमाई पंडित के नाम से जाने जाते हैं। तो निमाई पंडित का एक और नाम था तार्किक शिरोमणि के, तार्किक शिरोमणि उनका नाम। तो निमाई पंडित तो केवल वाद विवाद करते थे, और कुछ भी जो तथ्य रखते थे उसको कहते थे आप अभी इसको झुठलाइए, और सामने वाला जो व्यक्ति था वो उसको बात करने का प्रयास करता था, फिर वहाँ पर वो उसको झुठलाते थे, फिर वो फिर से स्थापित करते थे, फिर से गलत सिद्ध करते थे। इस प्रकार से एक ही सिद्धांत को लेकर के 50 बार उसको सही और गलत स्थापित करते थे। बाद में वो व्यक्ति भूल जाता था कि है क्या, है सही है या गलत है, इतने सारे आर्ग्यूमेंट दोनों साइड से होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान की लीला की, एक इतने बड़े विद्वान थे कि केशव कश्मीरी को भी उन्होंने परास्त किया। लेकिन फिर भी, हालांकि राधा कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी यही सिद्धांत को उद्गत करने के लिए जब तक ईश्वरपुरी से नहीं मिले, जब तक कृष्ण प्रेम का उन्होंने लक्षण प्रदर्शित नहीं किया। जब गया में जाकर के शिला ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनके आशीर्वाद से फिर वे दिखाते हैं कि कितना कृष्ण प्रेम उनके हृदय में, और उनके आदेश से वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, और उनके आदेश से ही कृष्ण प्रेम का प्रचार करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे आचार्य ने उद्गत किया है, कि हमारा जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, उसमें गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना, और गुरु की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहना, और गुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का ध्येय बनाना, यही एकमात्र कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मार्ग है। और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद और उनकी सेवा से किस प्रकार कितने लोगों ने प्रभुपाद जी को जीवन समर्पण किया, और आज उन लोगों को किस प्रकार का गहरा साक्षात्कार है कृष्ण प्रेम के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हरिनाम की महिमा के बारे में। तो ये शिला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए न्योछावर कर दिया, उनकी सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सोचिए 19-20 साल से लेकर के 70 साल तक, 50 साल शिला प्रभुपाद जी की सेवा में निरंतर लगे रहना, कितना बड़ा उपलब्धि है, कितना बड़ा एक उदाहरण है हमारे लिए। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को प्रेम प्रदान किया, और ईश्वरपुरी ने उनकी अंतिम दिनों में सेवा की। और उसी समय पर एक और उनके शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। तो भगवान जब कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं दोनों प्रकार के उदाहरण देते हैं, क्या सही स्थिति है और क्या सही स्थिति नहीं है। तो रामचंद्र पुरी हालांकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे लेकिन फिर भी माधवेंद्रपुरी के भाव को नहीं समझ पाए। इसका अर्थ है कि एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा या शिक्षा प्राप्त करने मात्र से सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को स्वयं मनन करके स्वयं निर्धारित करना होता है कि किस प्रकार से गुरु की सेवा करनी है, किस प्रकार से स्वयं को नम्र बनना है और किस प्रकार से भक्ति में प्रगति करनी है। क्योंकि शिष्य दोनों थे, ईश्वरपुरी भी थे रामचंद्रपुरी भी थे, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों का व्यवहार, दोनों का जो साक्षात्कार है वो पूर्ण रूप से भिन्न था। तो रामचंद्रपुरी जब माधवेंद्रपुरी अपने इस जगत के अंतिम दिनों में जब कृष्ण प्रेम का गहराई से आस्वादन कर रहे थे और वो एक श्लोक गा रहे थे आई दीन दयाल नाथ है, तो इस श्लोक के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में केवल तीन ही लोग इसका मर्म जान पाए। स्वयं राधा रानी जो ये श्लोक बोल रही हैं, जब कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके विरह में राधा रानी स्वयं ये श्लोक बोल रही हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, और तीसरे हैं केवल माधवेंद्रपुरी। सोचे कि माधवेंद्रपुरी का क्या स्तर है कृष्ण प्रेम का कि इस श्लोक का अर्थ केवल तीन लोग जान पाए जिनमें माधवेंद्रपुरी एक है। तो ये श्लोक का चर्चा करके जब वे विरह में कातर भाव से विलाप कर रहे थे तब रामचंद्रपुरी उनको सुझाव देते हैं बिना मांगे, सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइजर, और बोलते हैं कि आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं, आप तो शरीर नहीं है, आप तो ब्रह्म है, आप ब्रह्म पर चिंतन कीजिए, ब्रह्म पर चिंतन करेंगे तो आपके सारे जो कष्ट है उनका अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से बिना उनको जाने, बिना उनके भाव को जाने उनको सुझाव देने लगते हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस संदर्भ में एक कथा बताते हैं। एक बार एक माता ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखा, शिक्षक रखा, और शिक्षक उनको पढ़ाने लगा ट्रिग्नोमेट्री में नौवीं क्लास में। बोलो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, ऐसा बोलने लगा। तो वो माता ने सुना दूसरे कमरे से, वो इतना क्रोधित हो गई, वहां पर आई और बोले कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा देते हैं तुमको, क्या ए बी सी सिखाने के लिए? अरे ए बी सी तो मैंने इसको घर में सिखा दिया था पहले, तो तुम यहां से निकल जाओ, ए बी सी सिखाने की जरूरत नहीं। तो उनको समझाने की ये जो ए बी सी है और वो जो शुरू में ए बी सी देखा, दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति का भौतिक शरीर में कष्ट के कारण रोना और एक शुद्ध भक्त का एक कृष्ण प्रेम के विरह में या कृष्ण के विरह में रोना, ये दोनों एक ही चीज नहीं। तो रामचंद्रपुरी वो समझ नहीं पाए, उनको लगा कि ये शायद भौतिक शारीरिक कष्ट के कारण विलाप कर रहे, तो उनको सुझाव दिया और उसके कारण श्री माधवेंद्रपुरी ने उनको अपने संघ से वर्जित कर दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपका संघ मैं करूँगा तो मुझे पता नहीं क्या गति प्राप्त हो। और उस अपराध के कारण रामचंद्रपुरी को क्या उपलब्धि प्राप्त हुई? उनको इतनी तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त हुई कि वे हर वैष्णव में दोष देखने में निपुण हो गए। कोई भी वैष्णव हो, कहीं भी वैष्णव हो, कुछ भी करता हो, उसमें वो दोष निकाल सकते हैं, दोष देख सकते हैं। ये उनका गुरु के प्रति अपराध का फल था। तो ये समझना चाहिए कि अगर वास्तव में हरि गुरु वैष्णव का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है तब हमको दूसरे वैष्णवों में और दूसरे लोगों में अच्छे गुण देखने की और उनकी सराहना करने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तिविनोद ठाकुर उस गीत में कहते हैं सकल सम्माने कौरी बे शकति देहो नाथ यथा यथा, कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, आपकी कृपा बिंदु दीजिए कि जिससे मैं सभी लोगों का सम्मान कर सकूं, सब लोगों में अच्छे गुण देख सकूं। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और अगर हम अच्छे गुण भक्तों में नहीं देख पाते, उनके अवगुण या उनके अंदर कमियां हमें दिखती हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हमें हरि गुरु वैष्णवों की वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो रामचंद्रपुरी इस प्रकार से सभी में दोष देखने लगे, और अगर दोष नहीं देखते थे तो दोषों का निर्माण करते थे। जैसे एक बार वो जगन्नाथपुरी आए और जगदानंद पंडित के घर पर भोजन के लिए गए, तो जगदानंद पंडित ने जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद ला करके उनको परोसा, उनको भोजन कराया। उसके बाद वो बैठे कि अभी आप बैठो, रामचंद्रपुरी बोले जगदानंद पंडित, अभी आप बैठो मैं आपको भोजन कराऊंगा। तो जगदानंद पंडित, रामचंद्रपुरी तो माधवनपुरी के शिष्य हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो बोले नहीं नहीं मैं भोजन स्वयं लेता हूँ, प्लेट बना लूंगा मैं स्वयं। तो रामचंद्र बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बैठिए और मेरी इच्छा है, मेरा आदेश है कि मैं आपको भोजन प्रसाद जो है सर्विंग करूंगा। सर्विंग करने लगे और करते करते जगदानंद पंडित कहते नहीं अभी हो गया, अभी मेरा अखंड भोजन हो गया, अभी खंड तक हो गया। बोले नहीं अभी और खाना पड़ेगा, ये तो महाप्रसाद है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से फोर्सफुली जबरदस्ती उनको भोजन कराया, और करने के बाद हाथ धुलने के बाद फिर बोलने लगे अभी इधर बैठो। बोलने लगे अरे आपका क्या इंद्रिय संयम है, आप इतना खाते हैं? मैंने सुना था कि महाप्रभु के जो संगीगण हैं उनका इंद्रिय संयम नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रकार से जब कोई दोष नहीं दिखता था तो दोषों को निर्माण करते थे, ये रामचंद्रपुरी जी के गुण है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की सेवा से ईश्वरपुरी ने कृष्ण प्रेम प्रदान की प्राप्त किया, और उनकी सेवा नहीं करके, उनको सलाह सुझाव दे करके, उनके भाव को नहीं समझ करके रामचंद्रपुरी ने उनका एक प्रकार से श्राप प्राप्त किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी आए तब उन्होंने इस कथा का वर्णन किया, और उसके बाद महाप्रभु की बहुत इच्छा थी कि वो वृंदावन जा करके भगवान का दर्शन करना चाहते थे, वृंदावन का अनुभव करना चाहते थे। तो वृंदावन जाने के लिए कई बार निकलते थे, लेकिन भक्त लोग हर बार उनको मना कर देते थे। तो अंत में वो भी एक अलग लीला है, चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं पहले नवद्वीप मायापुर जाऊंगा, वहां पर मैं सखी माता का दर्शन करूंगा और गंगा माता में स्नान करूंगा, उसके बाद मैं फिर वृंदावन जाऊंगा। तो वहां से वृंदावन के लिए निकले, फिर नवद्वीप आए, नवद्वीप में कुलिया ग्राम में आए, जहां पर उन्होंने जिन लोगों ने अपराध किए थे उनको क्षमा किया। उसके बाद वे राम के लिए गए, वहां पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का उद्धार किया। उसके बाद वे कन्हई नटशाला आए, और कन्हई नटशाला आने के बाद फिर वे शांतिपुर आए। तो शांतिपुर में जब वे आए तो अद्वैत आचार्य प्रभु अति प्रसन्न हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, और उनके रहने के लिए समुचित उन्होंने व्यवस्था की, और तुरंत सखी माता को संदेश भेजा, उनके लिए पालकी भेजी कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, और पालकी में बैठकर के सखी माता वहाँ पर आ गई। ये दूसरी बार उनका मिलन है, जब दूसरी बार आए वृंदावन के पथ पर। तो सखी माता वहाँ पर आती है, और पिछली बार की तरह सखी माता कहती है कि मुझे इनके लिए भोजन बनाने का सेवा, भोजन बनाने का अवसर प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर कई दिन रहते हैं, और हर दिन जो सभी शांतिपुरवासी थे, सभी नवद्वीपवासी थे, उनके साथ हरिनाम संकीर्तन का आस्वादन करते हैं और उन सबसे मिलते हैं। उसमें बहुत सारा संवाद है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सखी माता के प्रति अपने जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय पर जब वे 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए, तो उनमें से एक दिन आज का दिन था, ये समय था जिस समय शिला माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस शिला अद्वैत आचार्य प्रभु ने वहां पर मनाया, और वो उत्सव आज भी इतना प्रसिद्ध है कि आज इस समय जहां अभी तो हम लोग तो कक्षा में बैठे हैं, लेकिन मायापुर मंदिर की ओर से पूरी व्यवस्था की जाती है, वहां पर लाखों लोगों के लिए आज प्रसाद वितरण किया जाता है। आज सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी शांतिपुर वाले हैं, नवद्वीप वाले हैं, और कहां कहां से लोग आते हैं, लोगों को भी पता नहीं रहता कहां से आते हैं। आप में से कुछ लोगों ने अगर नवद्वीप परिक्रमा में आज के दिन बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह घोषणा की थी कि जो भी कोई श्रीला माधवेंद्रपुरी के तिरुवास दिवस को मनाएगा, उनका गुणगान करेगा, उनको भोग अर्पण करके प्रसाद प्राप्त करेगा, विशेष रूप से शांतिपुर में, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, पूरी जगह से आकर के आज के दिन शांतिपुर में माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस मनाते हैं और वहाँ पर खिचड़ी प्रसाद, अन्य प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी के कई शिष्य थे, लेकिन अद्वैत आचार्य उनमें से प्रधान थे। तो अद्वैत आचार्य हर वर्ष बहुत जोर शोर से ये उत्सव को मनाते थे। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर थे और सुबह पता चला कि आज माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव दिवस है, तो तुरंत अद्वैत आचार्य जी ने व्यवस्था करना प्रारंभ किया। और ऐसा वर्णन आता है कि वहाँ पर सब लोग आकर के स्वयं सेवक वॉलंटियर बन रहे थे। सखी माता ने कहा कि सारा जो कुकिंग डिपार्टमेंट है वो मैं ही अकेले संभालूं। जब कुकिंग या कोई भी कार्य होता है तो एक लीडर के साथ वॉलंटियर लगता है। तो बाकी सारी जो स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि हम सखी माता को असिस्ट करेंगे, सब्जी कटिंग हम करेंगे और जो भी कार्य रहते हैं। उसका बहुत वर्णन आता है, और उस वर्णन में से एक मुख्य वर्णन इन चीजों का है कि किस प्रकार से जो भक्त थे वे इतने उत्साहित थे सेवा करने के लिए, फिर किसी ने कहा कि हम हार बनाएंगे, तो बाकी सब रेडी जाके बोले हम भी इसमें सहायक बनेंगे, फिर किसी ने कहा कि हम डेकोरेशन करेंगे। तो जो भी सेवा एक फेस्टिवल में होती है, जैसे कल के या परसों के फेस्टिवल में, परसों हमने टीके जी फेस्टिवल मनाया, तो उसमें जो जो सेवाएं होती हैं वो सभी सेवाएं थी श्रील माधवेंद्रपुरी जी के तिरुवाद दिवस के अवसर पर, और सभी सेवा के लिए तुरंत वहां पर भक्त लोग जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री जगन्नाथ बोले सुद्रमा की, जय श्री गौरनिता की, जय श्री प्रभुपाद, तो सभी सेवा के लिए भक्त लोग परम उत्साहपूर्वक वहां पर जमा हो गए और पूरा दिन कीर्तन के साथ सेवा चलती रही। एक ग्रुप पूरा जैसे 24 आवर कीर्तन हम करते हैं, जैसे पूरा सुबह से शाम तक कीर्तन चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वहीं पर थे तो शाम को वो निरीक्षण के लिए निकले, देखने के लिए कि कैसा सेवा चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जनरली राइस होता है, चावल होता है, तो टब में रहता है या किसी प्रकार से बर्तन में रहता है, तो उधर देखा कि पूरा राइस का भंडार है, वो पूरा कमरे में भरा हुआ है राइस, 5 कमरे में राइस भरा हुआ है। उसके बाद देखा कि और जो अन्य व्यंजन है, शाक है, कितने प्रकार के शाक है उनकी गिनती नहीं कर सकते। सची माता ने इतने प्रकार के शाक पकाए, उनका वर्णन आता है उसमें चैतन्य भागवत में, अनगिनत प्रकार के शाक, एक शाक के अलग अलग प्रकार के व्यंजन, जिनका के स्वाद अलग है, जिनका के सुगंध अलग है, और जिनका के जो दर्शन है देखने में भी अलग है। तो इस प्रकार से कितना उन्होंने व्यंजन बनाए उसकी कोई गिनती नहीं, और दाल और खीर इनके कुंड थे, केवल कमरे में नहीं भर सकते, इनके लिए कुंड थे, और जो फूलों का जो हार बनाने थे डेकोरेशन के लिए उसके लिए कई कमरे भरे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतना देख करके इतने प्रभावित हो गए अद्वैत आचार्य प्रभु के व्यवस्थापन से और उनके उत्साह से कि उन्होंने बोला कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, केवल भगवान शिव ही ऐसा व्यवस्थापन कर सकते हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु, इसलिए अद्वैत आचार्य और कोई नहीं है, साक्षात शिव जी के अवतार हैं। उनका जो उत्साह है सेवा करने का, उस उत्साह से इतना बड़ा आयोजन संभव है। इस प्रकार से पूरा दिन भक्तों ने कीर्तन किया, और उसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करने की बात आई तो फिर महाप्रभु और सारे भक्त बैठे, तो फिर सर्विंग के लिए बहुत सारे वॉलंटियर। मुझे बहुत प्रेरणा में निकल जब मैं पढ़ रहा था परम पूज्य राधानंद महाराज का प्रवचन, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से सेवा के लिए हमें उत्साही होना चाहिए, इस उदाहरण को उद्गत करके कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी के तिरुभाव दिवस की सेवा में सब लोग इतना उत्साही थे। तो फिर जो भी सची माता ने बनाया था वो सबको सर्विंग किया गया, उसके बाद भक्त लोगों ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर पूरी रात कीर्तन करते रहे, क्योंकि किसी भी आचार्य का तिरुभाव दिवस मनाना मतलब उन भगवान का कीर्तन करना और उनके जो दिव्य लीलाएं हैं उनका वर्णन करना, इस प्रकार से हम उनका तिरुभाव दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने इस तिरुभाव दिवस को संपन्न किया श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में, और प्रत्येक वर्ष अद्वैत आचार्य प्रभु जो भी उनके पास होता था, जितना भी, अब वो तो स्वयं भगवान है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से जो भी उनके पास होता था, धन हो, संपदा हो, लोग हो, पूरा वो अर्पित करते थे अपने गुरु के तिरुभाव दिवस को मनाने के लिए। तो ये जो भाव है गुरु की सेवा में सर्व कुछ समर्पण करने का, ये भाव हम श्री अद्वैत आचार्य प्रभु से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की सेवा में गुरु के तिरुभाव दिवस को मनाने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की। तो ये गुरु के प्रति समर्पण का भाव है, और हमें समझना चाहिए कि गुरु के प्रति जो हमारा श्रद्धा है या हमारा जो प्रेम है वो किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, और इसका उदाहरण हमने परसों के उत्सव में देखा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा पुरानी कथा नहीं है या ऐसी शास्त्रीय कथा या ऐसा 500 वर्ष पुरानी या फिर 5000 वर्ष पुरानी कथा नहीं है। ये जो माता जी है परशुराम प्रभु की पुत्री, वो 3 सितंबर 2016 को पहली बार उन्होंने तमालकृष्ण महाराज के बारे में जो प्रभुपद मेमोरी थे उसमें सुना था, कोई साक्षात वर्णन नहीं हुआ, और उसके बाद उनको इतना प्रेरणा प्राप्त हुआ महाराज जी के चरित्र से, उनके प्रभुपद के प्रति समर्पण से, उनके प्रभुपद के प्रति सेवाओं से, कि वे उनसे विरह में विलाप करने लगे। उनका अगर आपने ऑफरिंग सुना होगा ध्यानपूर्वक, तो इतना उन्होंने वर्णन किया था कि कितनी बार महाराज उनके स्वप्न में आकर के उनको सांत्वना देते हैं। और तो ये एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि बहुत बार हमारे मन में यह एक बात बैठ जाती है कि गुरु का संग हमको प्राप्त नहीं है, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं करते, इसलिए हम आदेशों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए हमको पता नहीं है जीवन में क्या करना है।
ऐसा नहीं,
गुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु जो है वो भगवान का कृपा अवतार है, और जो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है वही परमात्मा बाहर गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका अर्थ है कि गुरु भी परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और अगर हमारे अंदर तीव्रता है, अगर हमारे अंदर गुरु से संबंध स्थापित करने की और उनकी सेवा करने की, उनके प्रति समर्पण करने का भाव है, तो उनकी अनुपस्थिति में एक भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, वापु रूप से अनुपस्थिति में भी व्यक्ति उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त कर सकता है, उनसे पूरी तरह आसक्त हो सकता है, उनके विरह में व्यक्ति रो सकता है और उनकी इच्छा अनुसार ही अपने जीवन के सारे कार्य कर सकता है। तो इसी प्रकार जो हमारे आचार्य हैं उनकी कृपा भी हमारे लिए सदैव उपस्थित रहती है, और जो उनके आविर्भाव और तिरुभाव दिवस होते हैं उन दिनों में वो जो कृपा है वो और सरल तरीके से, आसान तरीके से हमारे लिए उपलब्ध रहती है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उनकी जो लीला है उन पर मनन करना है, उनसे हमको हमारे जीवन के लिए जो सीख है वो सीखनी है, और उनसे प्रार्थना करनी है, और उनके जो बताए गए मार्ग है उस मार्ग पर चलने का हमको प्रयास करना है। क्योंकि ये एक भक्ति रसामृत सिंधु का भी ये एक वर्णन है शुरू के पांच चीजों में कि जो साधु वर्तमान गामी, ऐसा एक पंथ है कि जो साधु के बताए गए मार्ग है, साधु जिस मार्ग पर चले हैं उस पर चलना है, महाजनो ये नगतासा पंथ है। तो माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बहुत विस्तार से चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, परम पूज्य राधानंद महाराज ने भी पूना में ही श्रील माधवेंद्रपुरी के बारे में कम से कम 4.5 घंटे का लेक्चर है। तो आज के दिन हमारे समय की उपलब्धता के अनुसार हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनके लिए वैष्णव गीत गा सकते हैं, क्योंकि श्रील माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम के भंडार है। माधवाचार्य के संप्रदाय में केवल कृष्ण की पूजा आराधना व्यक्ति करते थे, श्रील माधवेंद्रपुरी आने के बाद उन्होंने फिर राधा कृष्ण की पूजा आराधना शुरुआत की, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका और अत्यधिक प्रचार किया। तो इसलिए श्रील माधवेंद्रपुरी बहुत ही विशेष आचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको जो कृष्ण प्रेम भक्ति का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी जड़ से उनकी तुलना करते हैं। तो इसलिए आज का दिन हम उनकी जो सेवा भाव है उसके ऊपर मनन करके, उनके चरित्र के ऊपर मनन करके इस तरह से उनसे प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील माधवेंद्रपुरी की, श्रील माधवेंद्रपुरी त्रोभा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, हे दास करुणा करी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुमर चरण धोरी। क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे, क्षय सतसंगे देहो हे हमारे बोसे छी संगे रासे। एका की अमारा नाही पाया बाला हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे। আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দায় তব পাছে পাছে। আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দায় তব পাছে পাছে। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर ए दासे करुणा करी। दया पद छाया शोध हे अमाया तुमर चरण धोरी। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील माधवेन्द्र पुरी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गाय गौर प्रेम।